नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया, हालेलुया हा 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 हालेलुया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सब श्रोता भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब अपने परिवार और मित्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी अपने रेडियो के समीप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आपके इस प्रेम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हाँ तो मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय के पद 1-5 तक देखा था, जिसमें हमने देखा कि कैसे याकूब के जीवन में परेशानियां आई। फिर उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 3-5 पद, जहां हमने देखा कि याकूब कैसे अपने भाई से मिलने जाता है, वह अपनी जीवन की सुरक्षा भी करता है। तो इससे पहले कि हम अपने मुख्य विषय पर आएं, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और सहायता मांगें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए, जिसे आपने हमारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए दिया है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे सभी श्रोता भाई बहनों को अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। जो अपनी बीमारियों व तकलीफों में हैं, उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि वे परिवार में शांति को पाएं और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सकें। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। और याकूब अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा है, लेकिन वह अपने दासों को आगे आगे भेजता है और कहता है, जब तुम मेरे भाई एसाव से मिलो तो उसे मेरे प्रभु एसाव कहकर संबोधन करना और सारी बातों में ऐसे ही कहते रहना और अंत में उससे कहना कि हम आपके दास याकूब के सेवक हैं। मित्रों, इससे पहले याकूब ने इस तरह की बातें कभी नहीं कही थी। उसने पहलौठे के अधिकार को पाने के लिए शर्त रखी थी और उसे प्राप्त भी कर लिया था, यहाँ तक कि उसने उसकी आशीष भी चुरा ली। वह एक धूर्त था, परंतु अब उसकी बातचीत का ढंग बिल्कुल भिन्न है। मैं सोचता हूँ कि शायद उसने कुछ बातें मामा लाबान से सीख ली थी, जैसे मेरे प्रभु एसाव, यह तेरा दास याकूब है। मित्रों, आइए अब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 6 पद को पढ़ते हैं। और दूतों ने याकूब के पास लौटकर कहा, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को आ रहा है और उसके साथ 400 पुरुष हैं। मित्रों, इस संदेश ने याकूब को बहुत ही डरा दिया क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ है। एसाव ने अपने भाई से मिलने के बारे में दासों को कुछ भी ज्यादा नहीं बताया था। मैं यह मानता हूं कि याकूब ने उन सेवकों से पूर्ण रूप से पूछताछ की होगी, पूछा होगा कि क्या तुमने उसके चेहरे पर कोई शत्रुता या कड़वाहट या घृणा के चिन्ह मेरे प्रति देखे। मैं सोचता हूं कि उनमें से एक ने कहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसे आपके बारे में जानकर खुशी हो रही थी कि आप उससे मिलने आ रहे हैं और इसलिए अब वह भी आपसे मिलने आ रहा है। परंतु सच तो यह है कि एसाव का खुश दिखना याकूब के अंदर अशांति को उत्पन्न कर रहा था। उसे लगने लगा कि हो सकता है एसाव इसलिए खुश है कि वह याकूब से अब अपना बदला ले सकता है। जो भी हो, याकूब इस बात से बहुत ही दुखी था कि उसका भाई खुश है। मित्रों, अब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 7 और 8 पद में पढ़ते हैं। तब याकूब बहुत डरा और घबरा गया और उसने उन लोगों को जो उसके साथ थे और भेड़ बकरियों, गाय बैलों और ऊंटों को दो दलों में बांट दिया, क्योंकि उसने कहा, यदि एसाव आकर एक दल पर आक्रमण करे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। मित्रों, याकूब सोचता है कि वह बुरा फंस गया है। जैसे ही उसे पता चला कि उसका भाई उसे मिलने आ रहा है, उसने अपने लोगों को दो समूह में बांट दिया क्योंकि वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि यदि उसका भाई एक दल पर आक्रमण करता है तो उसका दूसरा दल बच सकता है, अर्थात भाग सकता है। मित्रों, अब आगे ध्यान दीजिए कि याकूब क्या करता है। वह अपनी व्यथा या दुख में परमेश्वर से निवेदन करता है, जिसे हम उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं। याकूब ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे दादा इब्राहिम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश में अपने संबंधियों के पास लौट जा और मैं तुझे संपन्न करूंगा। मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों के योग्य नहीं हूं जो तूने अपने दास पर प्रकट किए, क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यर्दन के पार गया था और अब तो मेरे पास दो दल हो गए हैं। मित्रों, अब हम यहां पर देखते हैं कि याकूब परमेश्वर से निवेदन करते हुए पुकारता है इस आधार पर कि वह उसके दादा इब्राहिम और उसके पिता इसहाक का परमेश्वर यहोवा है। अब मैं यहां पर याकूब के जीवन से कुछ नई बातों को ढूंढना आरंभ करता हूं। यह पहली बार है जब मैं सुन रहा हूं कि याकूब परमेश्वर से कहता है कि मैं आपकी थोड़ी सी दया के योग्य भी नहीं हूं। यह पहली बार है जब वह इस बात को स्वीकार करता है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच में ऐसे बहुत से मसीही भाई बहने हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं कि वे पापी हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। जब मैं उसे बताता कि वह अभी भी एक पापी व्यक्ति है तो इस बात से वह चिढ़ता था, परंतु कुछ समय के पश्चात मुझे सब कुछ बताया और कहा कि उसने क्या क्या किया है, परंतु अब वह उद्धार पा चुका है और वह पापी नहीं रहा क्योंकि प्रभु ने उसे बचा लिया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी वह एक पापी है। हम सब पापी हैं और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारा पुराना स्वभाव हम में बना रहता है और हम इस लायक भी नहीं हैं कि हम स्वर्ग में जा सकें। और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर पुराने स्वभाव को स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देंगे। मैं भी स्वर्ग में नहीं जा सकता और यही कारण है कि परमेश्वर को मुझे एक नया स्वभाव देना पड़ा। पुराना स्वभाव सुधारने के योग्य भी नहीं था। अब यहां पर याकूब का कहना आरंभ होता है और वह इस योग्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस आधार पर परमेश्वर की ओर बढ़ता है तो उसे पता लगेगा कि परमेश्वर उसके साथ बातचीत करते हैं, अर्थात वह इस बात को महसूस करता है कि परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं। मित्रों, यहां पर याकूब एक बहुत ही रोचक बात कहते हैं कि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यर्दन के पार गया था और अब मेरे पास दो दल हो गए हैं। जब वह यर्दन नदी के पार गया तो सिर्फ उसके साथ लाठी और एक लाठी लेकर वो निकला था। उसके पास सिर्फ एक ही लाठी थी और अब वह वापस आ रहा है और उसके पास दो दल हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं। मैं विनती करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से छुड़ा, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझ पर आक्रमण करे और माताओं और बच्चों सहित मारूंगा, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब सही में परमेश्वर को पुकारता है। वह रात याकूब के लिए बहुत ही कष्टमय रात रही होगी। उस समय उसके पास कोई नींद की दवा भी नहीं थी जिसे खाकर वह सो सके। वह रात भर बेचैन रहा होगा। तब अगले दिन के लिए वह एक रणनीति तैयार करता है कि वह एसाव का सामना कैसे करेगा, जिसे हम उत्पत्ति उसके 32 अध्याय और उसके 13 से 15 पद में पाते हैं। अतः उसने रात वही बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से उसने अपने भाई एसाव को भेंट देने के लिए चुनकर निकाला 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़े और 20 मेढ़े, दूध देने वाले 30 ऊंटनियां और उनके बच्चे, 40 गायें, 10 सांड, 20 गधियां और 10 गधे। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब अपने जानवरों के द्वारा बहुत उदार और अच्छा व्यवहार करता है, अर्थात अपने भाई को भेंट के रूप में देने के लिए अच्छा जानवर चुनता है। और आगे उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, उसने इन्हें अलग अलग झुंडों में करके अपने दासों को देकर भेजा और अपने दासों से कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। मित्रों, यह याकूब का तरीका था। वह अपने एक झुंड को अच्छी और कीमती वस्तुओं के साथ अपने भाई से मिलने के लिए भेजता है और जब वह पहला झुंड वहां पहुंचता है तब एसाव पूछता है कि यह क्या चीज है। तब याकूब के दास जवाब में कहते हैं कि हम तेरे भाई याकूब की तरफ से तेरे लिए ये भेंट लाए हैं। तब एसाव उन दान को स्वीकार करके अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ता है। फिर वह थोड़ी दूरी पर दूसरे झुंड या दल को मिलता है। तब सेवकों से पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और वे जवाब देते हैं, हम लोग एसाव से मिलने जा रहे हैं इन भेंटों के साथ जो उसके भाई याकूब ने उसके लिए भेजी थी। और तब वह कहता है, मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही एसाव हूँ। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए कि जहाँ याकूब और उसका परिवार है वहाँ पहुँचते पहुँचते एसाव का हृदय पिघल जाएगा, वो कोमल हो जाएगा। याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे स्मरण दिलाया कि तूने मुझसे कहा था कि अपने पिता के देश को लौट जा और तूने मुझसे कहा था कि तू मेरी रक्षा करेगा। परंतु क्या याकूब ने परमेश्वर पर विश्वास किया? जी नहीं, वह आगे बढ़ता है और अपने तरीके से इसका प्रबंध करता है, जो यह प्रमाणित करता है कि वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। मित्रों, मुझे डर लगता है क्योंकि अक्सर हम भी कई बार ऐसी ही अवस्था में होते हैं। हम में से कई लोग अपनी चिंता व बोझ प्रार्थना में परमेश्वर के पास ले जाते हैं और हम उसे परमेश्वर के सामने बिखेर देते हैं। मैं ऐसा करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी ऐसा करते होंगे। और जब हम प्रार्थना कर चुके होते हैं तब हम उठकर उन बिखरे हुए बोझ में से कुछ अपने पीठ पर फिर से लाद लेते हैं और चलना आरंभ कर देते हैं। हम वास्तव में उस पर पूरा भरोसा नहीं करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमें जैसा उस पर भरोसा व विश्वास करना चाहिए हम वैसा विश्वास व भरोसा नहीं करते हैं। आगे हम पदों में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 32 उसके 17 से 20 पद में, और उसने आगे के झुंड वालों को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुमसे मिलकर पूछे कि तू किसका दास है और कहाँ जा रहा है और तेरे आगे ये पशु किसके हैं, तब तू कहना, ये तेरे दास याकूब के हैं जो मेरे स्वामी एसाव के लिए भेजी गई भेंट है, और देख वह भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने फिर दूसरे और तीसरे को और उन सब को जो झुंड के पीछे पीछे आ रहे थे आज्ञा दी कि जब तुम एसाव से मिलो तो इसी प्रकार कहना, देख तेरा सेवक याकूब भी हमारे पीछे है, क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपने आगे उसके लिए भेंट भेजकर उसे प्रसन्न करूंगा और फिर उसके दर्शन करूंगा, हो सकता है कि वह मुझे ग्रहण कर ले। मित्रों, यह याकूब की योजना थी कि एसाव एक झुंड के बाद दूसरे झुंड से मिलेगा, अर्थात एक के बाद दूसरे से। और आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 21 से 23 पद को पढ़ते हैं, अतः भेंट उससे पहले पार उतर गई और उस रात वह स्वयं तंबू में रहा। वह फिर उसी रात को उठकर अपनी दोनों पत्नियों और दोनों दासियों और 11 पुत्रों को लेकर यबोक नदी के घाट के पार उतर गया। उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। मित्रों, यही वह महान रात थी जिसमें याकूब को एक महान अनुभव प्राप्त हुआ। याकूब नदी जिसे उसने पार किया वह क्षेत्र बहुत ही निर्जन और सुनसान था। मित्रों, वर्तमान समय में वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जॉर्डन हेसमाइड राज्य की तरफ जाने के लिए एक बड़े सुंदर रोड बनाए हैं जो उसी क्षेत्र में है। वहाँ पर ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिसे आप उस रास्ते में जाए बिना नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है। आप वहाँ पर चरते हुए भेड़ों व यबोक नदी में पानी पिलाते चरवाहों के झुंड को देख सकते हैं, जो बहुत ही मनमोहक लगते हैं। उस नदी के पार करने के लिए पुल भी बने हैं, लेकिन उस स्थान तक पहुँचने के लिए दोनों तरफ पहाड़ों से होकर चलना पड़ता है, जहाँ काफी दरारें व गुफाएं भी हैं। यही वह स्थान है जहाँ पर याकूब अपने भाई के डर से आया था। वह खुश नहीं था और उसमें डर और संदेह भरा हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने एसाव के साथ अच्छा वर्ताव नहीं किया था। पहलौठे के अधिकार को लेने के लिए जिस तरीके से याकूब ने लिया, परमेश्वर ने उसे कभी नहीं कहा था। परमेश्वर ने उसे दे दिया होता, अर्थात पहलौठापन का अधिकार उसी के लिए होता। और हम देखते हैं कि उस रात याकूब अपने साथ के सभी लोगों को यबोक नदी के उस पार भेजता है, परंतु वह अकेला नदी के इस पार ही रह जाता है, यह सोचकर कि यदि उसका भाई एसाव आता है तो वह याकूब को मारेगा, परंतु उसका परिवार बच जाएगा। इसलिए याकूब अकेला वहां पर रुक जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं, तब याकूब अकेला रह गया और एक पुरुष आकर पांव फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। मित्रों, इससे पहले कि याकूब के इस कुश्ती के बारे में देखें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि याकूब उस रात कुश्ती लड़ा, लेकिन वास्तव में याकूब किसी के साथ कुश्ती लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले से ही वह एक तरफ लाबान की बातें अभी भी उसके हृदय में थी और वह जानता था कि लाबान उसका भला नहीं चाहता है और आगे उसका बड़ा भाई एसाव था। याकूब की शक्ति इन दोनों के आगे कुछ नहीं थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे आगे कुआं और पीछे खाई और वह बीच में हो, और उसे यह भी मालूम नहीं था कि किस ओर भागे या जाए। क्या आप सोचते हैं कि उस रात वह किसी तीसरे विरोधी की भी उम्मीद कर सकता था? मैं नहीं सोचता कि उसे कोई इच्छा रही होगी कि वह किसी तीसरे विरोधी के साथ लड़ाई करे या मोल ले। कुछ वर्ष पूर्व एक पत्रिका में खेल जगत के स्तंभ में एक महान कुश्तीबाज को वोट देने के संबंध में लिखा था। उसमें लिखा गया था कि इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध खिलाड़ी को एक भी मत नहीं मिला जिसने याकूब के साथ कुश्ती की थी। और किसी ने पत्रिका के संपादक को पत्र लिखा जिसमें लिखा था, क्या आप मुझे इस कुश्तीबाज या पहलवान याकूब के बारे में कुछ बता सकते हैं? उस पत्रिका के लेखक ने इससे पहले याकूब के बारे में कुछ भी नहीं सुना था और वास्तव में उसने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। याकूब कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं था, इसलिए हम इसे आरंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं ताकि आप भी संदेह में न रहें। उस रात याकूब अकेला था क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था और वह किसी तरह की लड़ाई का इंतजार नहीं कर रहा था। मित्रों, बहुतों के मन में यह प्रश्न उठता है कि उस रात याकूब से कुश्ती लड़ने वाला कौन था। इसके बारे में बहुतों ने अपने कल्पनात्मक उत्तर भी दिए हैं और लोगों को संतुष्ट करने का प्रयत्न भी किया है, परंतु मैं समझता हूं कि यह कोई और नहीं है परंतु यीशु मसीह है, जो मानव देह से पूर्व पृथ्वी में आने से पूर्व का रूप है, क्योंकि होशे की भविष्यवाणी में हम इसके कुछ प्रमाण को पाते हैं। तो आइए हम होशे की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 1-5 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, एप्रेम हवा से पेट भरता है और बार बार पुरवाई की पीछा करता है, वह झूठ और हिंसा को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त वह अश्शूर से वाचा बांधता है और मिस्र को तेल पहुंचाता है। यहूदा पर भी यहोवा का एक अभियोग है, वह याकूब को उसके आचरण के अनुसार दंड देगा, वह उसके कार्यों के अनुसार उसे प्रतिफल देगा। गर्भ में उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ी और बड़े होने पर वह परमेश्वर के साथ लड़ा, हाँ वह स्वर्गदूत से लड़ा और प्रबल हुआ। उसने रो रो कर उससे अनुग्रह चाहा, बेतेल में उसको यहोवा मिला और वहीं उसने, हाँ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने हमसे बातें की, उसका नाम यहोवा है। मित्रों, यहां पर लिखा है उसका नाम यहोवा है या यहोवा उसका नाम है, यह कोई और नहीं परंतु यहोवा परमेश्वर थे, देह धारण करने से पूर्व वाले यीशु मसीह, जिन्होंने उस रात याकूब के साथ कुश्ती लड़ी। हम उत्पत्ति के पुस्तक 32 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं, और जब उन्होंने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांग की नस को छुआ, इसलिए याकूब की जांग की नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उखड़ गई। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब इस कुश्ती में आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह उन लोगों की तरह नहीं था जो हार मान लेते, और परमेश्वर का दूत उस पर प्रबल होने के लिए संघर्ष कर रहा था। और अंत में उसने देखा कि सुबह होने वाली है और याकूब उसे जाने नहीं दे रहा है, तब उसने उसके जांग की नस को छुआ, उसने उसे पंगु बनाया, अर्थात याकूब लंगड़ा हो गया। आगे हम उत्पत्ति 32 उसके 26 पद में पढ़ते हैं, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है, परंतु याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे न जाने दूंगा। मित्रों, अब यहां पर क्या होता है कि याकूब कुश्ती नहीं लड़ रहा है परंतु सिर्फ उसे पकड़े हुए है, वह सिर्फ उसे पकड़े हुए है और जाने नहीं दे रहा है। उसने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर के साथ संघर्ष करके और उसका मुकाबला करके वो कहीं का नहीं रहेगा। आप सिर्फ उसमें बने रहने के द्वारा और उसे पकड़े रहने के द्वारा ही बच सकते हैं या कुछ बन सकते हैं, अन्यथा इब्राहिम ने अपने जीवन में इस बात को सीखा और इसलिए उसने परमेश्वर को आमीन कहा, अर्थात ऐसा ही हो। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे उसके लिए धार्मिकता गिना। इब्राहिम अपने विश्वास के द्वारा जीवन की डोर के अंतिम छोर पर पहुंचा और उसने अपने बाहों से परमेश्वर को आलिंगन दिया। मेरे प्रिय मित्रों, जब आप भी ऐसी कठिन परिस्थिति में होकर गुजरते हैं तब हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं। जब आप उसे थामे रहने की इच्छा रखते हैं तब वह आपकी सहायता करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। लेकिन क्या आप इब्राहिम की तरह या याकूब की तरह उसे थामने की इच्छा रखते हैं? यदि आप परमेश्वर से सहायता पाना चाहते हैं तो आपको उसे थामना होगा। हम आगे देखते हैं कि याकूब का नाम बदलकर इसराइल हो जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसके 27 और 28 पद में लिखा है, तब उसने पूछा तेरा नाम क्या है, और उसने कहा याकूब। तब उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से लड़कर प्रबल हुआ है। मित्रों, अब वह याकूब बिल्कुल नहीं रहा, वह जो अनाधिकार ग्राही और धोखेबाज है, परंतु अब इसराइल है, वह जो परमेश्वर और मनुष्य के साथ लड़कर प्रबल हुआ है। अब हम इस व्यक्ति इसराइल के जीवन में एक नए स्वभाव को प्रकट होते देखेंगे जो उसका बदला हुआ स्वभाव होगा। तो आइए हम उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 29 और 30 पद को पढ़ें। तब याकूब ने उससे कहा कृपा करके मुझे अपना नाम बता, परंतु उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है। फिर उसे वही आशीर्वाद दिया, इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम पनियल रखा, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। याकूब ने परमेश्वर के स्वर्गदूत अर्थात प्रभु यीशु मसीह के देह में इस पृथ्वी पर आने से पूर्व को देखा था। तब हम उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 31 और 32 पद में पढ़ते हैं, पनियल से उसके निकलते निकलते सूर्योदय हो गया और वह जांग से लंगड़ा रहा था। इसलिए इसराइली आज भी जांग को जोड़ने वाली कुल्हे की नस को नहीं खाते, क्योंकि उस पुरुष ने याकूब की जांग की जोड़ पर कुल्हे की नस को छुआ था। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब को पाने के लिए परमेश्वर को उससे लंगड़ा करना पड़ा, परंतु उसने उसे प्राप्त कर लिया। याकूब पहले हारने को तैयार नहीं था, जो एक दुविधा का कारण बन गया था। परमेश्वर ने सोचा कि याकूब थोड़ी देर तक संघर्ष करेगा या पकड़े रहेगा, फिर छोड़ देगा, अर्थात हार मान लेगा। परमेश्वर उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और अंत में उसने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहे हैं और याकूब भी अपना समर्पण नहीं कर रहा है, तब देखो कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति के साथ एक सेकंड में ही याकूब को निश्चित रूप से हरा हुआ झुका सकते थे, परंतु वह उसकी इच्छा को झुकाना व हराना नहीं चाहते थे। याकूब उस छोटे बालक के समान था जिसे उसकी माँ ने एक कोने में बैठने के लिए कहा, लेकिन कुछ समय के बाद माँ ने कुछ आवाज सुनी और उसने बालक को बुला लिया। उसने पूछा बेटे क्या तुम वहां कोने में बैठे थे? उसने उत्तर दिया हाँ मैं बैठा तो था, परंतु दिल के अंदर मैं अभी भी खड़ा हूँ। जहां तक याकूब की बात है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वह अपने अंदर खड़ा था और अपने को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं था। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर याकूब के साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। वह याकूब के जांग के नस को छूते हैं। सिर्फ परमेश्वर की एक अंगुली के छूने से ही याकूब असहाय हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि परमेश्वर उसके कंधे को नहीं झुका रहे। अब याकूब उसे थामे हुए है। तब दूत कहता है कि मुझे जाने दे, और याकूब उससे कहता है कि नहीं, मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए। अब यहाँ पर वह परमेश्वर को थामे हुए है, और अब वह संघर्ष और प्रयत्न करना खत्म हो चुका है, और अब यहाँ से याकूब आत्मिक जीवन प्रदर्शित करने जा रहा है जो परमेश्वर पर आश्रित है। मित्रों, आप यह परिवर्तन थोड़े समय की सूचना के अंतर्गत ही देख पाएंगे। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे स्नायु तंत्र में कुछ स्नायु जुड़े हुए हैं जिनके कारण हम कुछ क्रियाओं की आदत से मजबूर हो जाते हैं। हम आदतों में रहने वाले सृष्टि हैं। यह व्यक्ति भी कई बार अपनी पुरानी आदतों में बहुत सी बार गिरता है, परंतु अब हम इस व्यक्ति में कुछ नई बातों को देखना आरंभ करेंगे। इससे पहले कि हम उसके बारे में अच्छी तरह जानें, तब तक हम पाएंगे कि वह परमेश्वर का एक अच्छा भक्त बन गया है। मित्रों, हमने उससे पहले उसके घर में और फिर हरान में देखा था, जहां पर वह एक सांसारिक व्यक्ति था। यहां पर पनियल में यबोक नदी के किनारे हम उसे लड़ते हुए पाते हैं। इसके बाद और मिश्र देश में जाने तक हम उसे एक विश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम उसके जीवन के तीन चरणों को देखते हैं। पहला, वह एक सांसारिक व्यक्ति। उसके बाद दूसरा, वह व्यक्ति जो लड़ और संघर्ष कर रहा है। और तब तीसरा और अंतिम, एक विश्वासी व्यक्ति। मित्रों, नए नियम में एक दूसरा जवान व्यक्ति है जो याकूब का पुत्र है, जिसका नाम तार्सस का साउल व रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय में अपने संघर्ष के बारे में कहता है कि उसके जीवन में तीन भाग हैं। जब उसका जीवन परिवर्तन हुआ तो उसने सोचा कि अब वह एक अच्छा मसीही जीवन जी सकेगा। वहीं पर उसने गलती की। बहुत मसीह सोचते हैं कि वे अब अच्छा जीवन जिएंगे। उसने सोचा कि यह आसान काम है, लेकिन यही उसका कठिन भाग था, और यहीं पर पौलुस को भी समस्या हुई। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूँ। मित्रों, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए हम इस अध्ययन को यहीं पर रोकते हैं। अगले अध्ययन में फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सबों की सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।